नमस्ते फ्रेंड्स, उषु रेडियो के नए कलरफुल एपिसोड में हम सबका हार्दिक स्वागत।
Is life our celebration of the joy we've come to know? My love for you I'll show is overflowing. This life our celebration of the joy we've come to know. My love for you I'll show is overflowing. This life our celebration of the joy we've come to know. My love for you I'll show.
आज के एपिसोड में डिस्कोर्स प्रेम रंग रस और चदरिया वॉल्यूम नंबर 10 से लिया गया है, जिसमें ओशो हमें बता रहे हैं कि कैसे सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का जन्म नेचुरली हमारे भीतर या हमारे थ्रू जन्म लेता है जब हमारे अंदर ध्यान, मौन और शांति उतरते हैं।
Ta-da-da-ma-do-dum. तीसरा प्रश्न, संत सदियों से गाते रहे गीत शाश्वत के सनातन के, यह गंगा अखंड बहती रही है। मैं सोचकर ही चमत्कृत हो उठता हूं, इतनी सृजनात्मकता का स्रोत कहां है। संत सदियों से नहीं गाते रहे, संतों से सदियों से एक ही गाता रहा है, संत नहीं परमात्मा ही गाता रहा है। जब तक संत गाए तब तक कवि, जिस दिन संत से परमात्मा गाए उस दिन ऋषि। जब तक संत स्वयं अपना बोल बोले, अपना सोच विचार, अपने अनुमान, अपना तर्क जाल, अपना सिद्धांत, अपना शास्त्र। जब तक संत की बुद्धि बीच में हो तब तक संत संत नहीं है, चाहे कितने ही मधुर उसके वचन हो, चाहे कितनी ही मधुसिक्त उसकी वाणी हो। पौरुषे मनुष्य की ही है, पार से नहीं आई है, इसलिए मुक्तिदायी नहीं हो सकती। जब संत केवल वाहक होता है, केवल बांस की पोली पोंगरी होता है, परमात्मा के ओंट पर रखी हुई, तुम्हें तो सुनाई पड़ते हैं गीत बांसुरी से ही आते हुए, मगर गीत परमात्मा के होते। जब संत स्वयं नहीं बोल रहा होता, स्वयं शून्य हो गया होता है और परमात्मा को बोलने देता है, तब वेद का जन्म होता है, उपनिषद का जन्म होता है, गीता का, कुरान का जन्म होता है, बाइबल का जन्म होता है, तब बड़े अद्भुत गीत उतरते। मगर संत के उन पर हस्ताक्षर नहीं होते, उन पर हस्ताक्षर परमात्मा के होते। तो पहली बात, संत तो बहुत हुए लेकिन गायक एक है, बांसुरियां बहुत लेकिन बांसुरी वादक एक है। दूसरी बात, वे जो गीत शाश्वत के और सनातन के हैं, मनुष्य गा भी नहीं सकता, मनुष्य तो क्षणभंगुर है। क्षणभंगुरता में कैसे शाश्वत का गीत उठेगा? मनुष्य तो मिटे तो ही शाश्वत का गीत बन सकता है। मनुष्य भूल ही जाए कि मैं हूं, उस विस्मृति में ही शाश्वत समय में झलकता है। भक्त वही है जो भगवान की भक्ति में मस्त हो जाए, ऐसा कि भूल जाए, जैसे शराबी भूल जाए, भूल जाए सारा संसार, न और की सुध रहे न अपनी सुध रहे, ऐसे मस्ती की अवस्था में शाश्वत और सनातन निश्चित गाता है, जरूर उतर आता है। तुमने पूछा, चमत्कृत होता हूं ये देखकर, ये गंगा अखंड गंगा बहती ही रही है, क्योंकि यह परमात्मा की गंगा है, बहती ही रहेगी। भौतिक गंगा तो कभी सूख भी सकती है, लेकिन यह स्वर्गीय गंगा है, यह नहीं सूखेगी। जब तक वृक्षों में फूल लगेंगे, आकाश में तारे होंगे, पक्षी पंख फैलाएंगे और उड़ेंगे, तब तक, जब तक मनुष्य है और मनुष्य के भीतर अनंत को पाने की अभीप्सा जगती रहेगी और जब तक प्रार्थना उठती रहेगी, तब तक कहीं ना कहीं किसी कोने में, पृथ्वी के किसी हिस्से में तीर्थ बनता रहेगा, काबा निर्मित होता रहेगा, कोई गाएगा शाश्वत को, सनातन को। परमात्मा अखंड है, इसलिए उसकी गंगा अखंड है। और हम सौभाग्यशाली कि हमारे बावजूद भी कभी कभी कोई कंठ परमात्मा को हमारे भीतर गुंजा देते, हमारे बीच गुंजा देते। एक स्वर पाकर तुम्हारा बन गया हूं बांसुरी में, मौन विजड़ित बांसा में पड़ा था बेसुध अजाना, किंतु तनमन छेड़ तुमने कर लिया अपना न माना, दर्द पीने को तुम्हारा बन गया हूं आंजुरी में, अधर क्या तुमने मिलाए हुए रस में भाव मेरे, गीत अगणित सप्त स्वर में गा उठे सब घाव मेरे, मधु अधर छूकर तुम्हारा बन गया हूं मधुकरी में। यदि न देते वेदना तुम भावना क्यों जन्म लेती, शब्द केवल शब्द रहते चिंतना यदि लय न देती, कल्पने होकर तुम्हारा बन गया हूं नभचरी में, एक स्वर भी उतराए उसका एक झलक भी मार जाए वह, जरा सी देर को झरोखा खुल जाए एक किरण उसकी उतराए, कि तुम्हारे भीतर गीतों ही गीतों की वर्षा हो जाएगी। तुम उठोगे तो गीत होगा, तुम बैठोगे तो गीत होगा, तुम सोओगे तो गीत होगा। गीत गाओ या ना गाओ, तुम्हारा होना ही गीत में होगा। तुम्हारे चारों तरफ गीत की झर लगी रहेगी, बूंदाबांदी होती रहेगी, तुम्हारा अस्तित्व काव्य में हो जाएगा। एक स्वर पाकर तुम्हारा बन गया हूं बांसुरी में, बस एक स्वर काफी है, एक स्वर भी बहुत है, उसके मधुकलश की एक बूंद काफी है, ऐसा डुबाती है कि फिर उबरने का मौका नहीं मिलता, ऐसा मस्त करती है कि फिर मस्ती कभी टूटती नहीं। और जिसके जीवन में परमात्मा से थोड़ा सा संबंध जुड़ गया हो, जरा सा कच्चा धागा भी जुड़ गया हो, उसके जीवन में सृजनात्मकता बह उठती, अनंत अनंत धारों में बह उठती। क्यों? क्योंकि परमात्मा सृष्टा है, उससे जुड़ने का लक्षण ही यही है कि तुम्हारे भीतर भी सृष्टा का जन्म हो जाए, तुम्हारे भीतर भी सृजन की ऊर्जा तरंगे लेने लगेगी। अगर परमात्मा से जुड़ के तुम्हारे भीतर सृजन पैदा ना हो तो समझना कि तुम जुड़े नहीं, कुछ चूक हो गई, तुम भ्रांति में हो, या तो खुद धोखा खा गए हो या दूसरों को धोखा दे रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे बहुत से तथाकथित साधु संत या तो धोखे में हैं या धोखा दे रहे हैं, उनके जीवन में कोई सृजनात्मकता नहीं मालूम होती, न कोई गीत बनता मालूम होता, न कोई नृत्य उठता मालूम होता, उनके जीवन में आनंद नहीं, उल्लास नहीं, रंग नहीं, रस नहीं, ये जो दूलंदास कहते हैं प्रेम रंग रस ओढ़ी चदरिया, कितने तुम्हारे महात्मा कह सकेंगे राम राम छपी हुई नाम की चदरिया ओढ़ लेंगे, लेकिन कितने तुम्हारे महात्मा कह सकेंगे कि हमने प्रेम के रंग और रस में डुबाए गई चादर ओढ़ी। कहने की ही बात नहीं, कितनों का जीवन इसका प्रमाण होगा। जब तक कोई नाच ना उठे, गुनगुना ना उठे, जब तक किसी के उठने बैठने में सृजनात्मकता का प्रसाद ना झरने लगे, जब तक किसी की आंखों में चांतारों की चमक ना आ जाए, सागरों की गहराई ना हो, उत्तंग शिखरों की ऊंचाई ना हो, जब तक किसी के हाथों में आकाश ना रखा हुआ मालूम पड़े, तब तक समझना कुछ चूक हो रही। लेकिन सदियों से हम नकारात्मक हो गए। हम किसी को इसलिए महात्मा मानते हैं कि उसने बहुत उपवास किए, उत्सव कितने किए, उत्सव की कोई गिनती ही नहीं करता। एक जैन मुनि से मैं मिला, उनके भक्तों ने कहा कि मुनि महाराज ने इस वर्ष एक साल में 120 उपवास किए। मैंने मुनि महाराज की तरफ देखा, उनकी रीढ़ सीधी हो गई, चेहरे पर दंभ आ गया। मैंने पूछा और उत्सव कितने किए? श्रावक को तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये प्रश्न भी कोई प्रश्न, उत्सव मुनि महाराज और उत्सव, वे केवल उपवास करते। और उपवास मैंने उनके श्रावकों का कहने की जरूरत नहीं, उनके चेहरे पे लिखा हुआ है। इससे ज्यादा मातमी चेहरा मैंने दूसरा देखा ही नहीं। धर्म के नाम पर मातम, जैसे घर में कोई मर गया हो, जैसे अर्थी बांधी जा रही हो। लोगों की नकारात्मक दृष्टि हो गई, कितने उपवास किए यानी कितने दिन भूखे मरे, कितना अपने को सताया, कांटे की सेज पर जो सोया है लोग उसको नमस्कार करते। अब ये पागल है, विक्षिप्त है आदमी, कांटे की सेज पर सोने को बनाया नहीं गया है। तुमने किसी पशु को किसी पक्षी को कांटों की सेज बना के सोते देखा? पशु पक्षी भी अपने लिए सुविधा बनाते, पक्षी भी घोंसला बनाता है, घोंसले में घासपात की गद्दी लगाता है, पशु भी अपने लिए मात खोदता है जमीन में ताकि जमीन उत्तप्त होती गर्म होती शीत से बच सके, झाड़ियों में छुप के सोता है। तुमने किसी पशु पक्षी को कांटों की सेज बना के उस पर लेटते देखा? सिवाय आदमी के इतना पागलपन और कहीं नहीं होता। लेकिन हम इसकी पूजा करते हैं, इसलिए कुछ नासमझ कुछ विक्षिप्त लोग यह भी करने को राजी हो जाते। जिस चीज से पूजा मिले लोग वही करने को राजी हो जाते। अगर सिर के बल खड़े होने से पूजा मिलती तो लोग सिर के बल खड़े हो जाएंगे, हालांकि सिर के बल ज्यादा देर खड़ा होना खतरनाक है। एकाध क्षण के लिए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा देर खड़ा होना मस्तिष्क को नष्ट करता है, क्योंकि मस्तिष्क के तंतु बहुत बारीक है और खून की धार अगर बहुत जोर से मस्तिष्क में पहुंचे तो तंतु टूट जाते। बहुत बारीक तंतु हैं, उनकी बारीक होने का तुम अंदाजा ऐसी से लगा सकते हो कि 100,000 मस्तिष्क के तंतु एक के ऊपर एक रखे जाएं तो एक बाल के बराबर मोटे होते। उनकी बारीकी तुम इससे अंदाज लगा सकते हो, इस छोटी सी खोपड़ी में 7 अरब तंतु हैं। जमीन की जनसंख्या कम है, अभी 4 अरब है। तुम्हारे भीतर मस्तिष्क की जनसंख्या बड़ी है, 7 अरब। ये जो नाजुक अति नाजुक तंतु हैं, जिनको आंख से देखा भी नहीं जा सकता, जब तुम सिर के बल खड़े हो जाते हो और खून झटके के साथ जमीन के गुरुत्वाकर्षण के कारण सिर की तरफ भागता है तो चेहरा भला थोड़ी देर को लाल होता मालूम पड़े, लेकिन मस्तिष्क गमा बैठोगे। इसलिए तुम्हारे हठयोगियों में बुद्धिमान आदमी मिल जाए ये जरा असंभव। सिर के बल खड़े होने वाले लोगों में तुम बुद्धि की कोई प्रखरता ना पाओगे। वैज्ञानिक कहते यही हैं कि आदमी में बुद्धि इसलिए पैदा हुई कि वो 2 पैर के बल खड़ा हो गया, नहीं तो बुद्धि पैदा नहीं होती। बंदर और आदमी में इतना ही फर्क है, बंदर में बुद्धि पैदा नहीं हो सकी। क्यों? उसके मस्तिष्क में खून का प्रवाह ज्यादा हो रहा है, इसलिए तंतु बारीक तंतु पैदा नहीं हो सकते। मनुष्य 2 पैर के बल खड़ा हो गया, सिर की तरफ खून का प्रवाह कम हो गया, क्योंकि जमीन की तरफ चीजें खींचती हैं गुरुत्वाकर्षण से, सिर की तरफ खून का जाना कम हो गया, कम से कम हो गया। जितना कम खून गया उतने बारीक तंतु पैदा हो गए। जितने बारीक तंतु पैदा हो गए उतनी सूक्ष्म प्रतिभा का जन्म हुआ, अभिव्यक्ति हुई। लेकिन अगर सिर के बल खड़े होने वाले लोगों को लोग सम्मान देते हो तो लोग सिर के बल खड़े हो जाएंगे, सिर गमा देंगे, बुद्धि खो देंगे, मगर सम्मान मिल जाएगा। कोई अपने को कोड़े मार रहा है, कोई धूप में नंगा खड़ा है, कोई शीत में नंगा खड़ा है, कोई जाके जब बर्फ पड़ रही हो तब बर्फ में नंगा खड़ा है, इन सबको हम सम्मान देते हैं। ये असृजनात्मकता को सम्मान देना है। और इसका परिणाम यह हुआ है कि धर्म के नाम पर विक्षिप्त लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उनको देखना हो तुम कुंभ के मेले में चले जाना, एक से एक ज्यादा विक्षिप्त लोगों के समूह तुम देखोगे, सब तरह के पागल, जिनको पागलखानों में होना चाहिए, जिनकी मानसिक चिकित्सा होनी चाहिए, लेकिन वे सब तुम्हारे महात्मा हो गए। धर्म की हमें मौलिक व्याख्या बदलनी चाहिए, धर्म की हमें कसौटी ही सृजनात्मकता से करनी चाहिए, विधायक नकारात्मक नहीं। किसने जीवन को कितना सौंदर्य दिया है, यह कसौटी होनी चाहिए। किसने जीवन को कितने गीत दिए, कितना उत्सव दिया, किसने जीवन को कितना प्रेम दिया और प्रेम की संभावना दी। अगर तुम जिंदगी को थोड़ा सा सुंदर छोड़ जाओ जैसा तुमने पाया था, तो मैं तुम्हें धार्मिक कहूंगा। तुम जरा सा और रंग दे जाओ जिंदगी को, एकाध फूल और खिला जाओ, तो मैं तुम्हें धार्मिक कहूंगा। जिंदगी में कुछ जोड़ जाओ, एक राग और, एक मल्हार और, मैं तुम्हें धार्मिक कहूंगा। क्योंकि तुम जब भी कुछ सृजन करते हो तभी तुम परमात्मा से जुड़ गए होते हो, या जब तुम परमात्मा से जुड़ गए होते हो तभी तुम्हारे भीतर सृजनात्मकता का जन्म होता है। परमात्मा सृष्टा है, ये तो तुमने सुना, बार बार सुना, लेकिन इसका तुमने ठीक ठीक तार्किक निष्कर्ष नहीं निकाला। अगर परमात्मा सृष्टा है तो सृजन प्रार्थना होगी, अगर परमात्मा सृष्टा है तो सृजन साधना होगी, क्योंकि सृष्टा सृजन की ही भाषा समझ सकेगा। अगर परमात्मा ने यह विराट अस्तित्व बनाया, कुछ तुम भी बनाओ, छोटा सही, अपनी सीमा में छोटा ही होगा, हमारे हाथ भी छोटे हैं, क्षमता भी छोटी, मगर एक मूर्ति तो गढ़ सकते हो, एक पत्थर को तो छेनी उठा के रूप दे सकते हो, एक पत्थर में छुपी हुई प्रतिमा को तो प्रकट कर सकते हो, शब्दों में छंद तो बांध सकते हो, तुलिका उठाकर किसी चित्र में रंग तो भर सकते हो, जीवन में, जीवन के संबंधों में थोड़ी प्रेम की वातास तो घोल सकते हो, जीवन को थोड़ा उत्सव में, नृत्य में तो कर सकते हो, बजाओ वीणा, बजाओ बांसुरी, नाचो, मृदंग पर थाप पड़ने दो, मैं तुम्हें धार्मिक कहूंगा। उत्सवपूर्ण जीवन धार्मिकता है। जिस क्षण वाणी का हुआ प्राण से मिलन मौन, सर्जना पिघलकर धरती में साकार हुई, कुछ तार पड़े थे बिखरे से, सब कहते हैं वे आदि अंत अवसान न जाने क्या क्या थे, स्वर सोए थे उनमें कितने, कितनी झंकारें उनमें थी निष्पंद, उन तारों पर कुछ गांव में बहलाऊं मन है देव तुम्हारा भी, तुमने छोटी सी वीणा दी फिर एक बार, जिस क्षण वीणा का हुआ प्राण से मिलन मौन, वंदना पिघलकर धरती में साकार हुई। मैं क्या जानू पथवी विधान, मैं तो भविष्य के ज्योति शिखर पर पग धरने वाला विहान, जिसकी विधायका शक्ति भावना भरी भक्ति, मैं पलक एक, मैं एक गान, उच्छ्वास एक, विश्वास एक, मैं ही तुली था देव तुम्हारे हाथों में, जिस पर श्रद्धा थी गई रीज फिर एक बार, जिस क्षण श्रद्धा का हुआ प्राण से मिलन मौन, साधना पिघलकर धरती में साकार हुई, जिस क्षण वाणी का हुआ प्राण से मिलन मौन, सर्जना पिघलकर धरती में साकार हुई। उतारो परमात्मा को थोड़ा तुमसे पृथ्वी पर लाओ, सेतु बनो, द्वार बनो उसके, सीढ़ियां बनो कि नाचता परमात्मा तुमसे पृथ्वी पर उतर सके। बहुत हो चुकी स्वर्ग की बातें जो कहीं और है, इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग कहीं और है और नरक तुमने यहां बना लिया। स्वर्ग कहीं और है तो तुम करते भी क्या, फिर नरक ना बनाते तो? या तो स्वर्ग होगा या नरक होगा, दोनों के बीच तथस्थ नहीं हो सकते। या तो तुमसे कुछ सुंदर का सृजन होगा या फिर कुछ विध्वंस होगा, कुछ सुंदर का विनाश होगा। तुम तथस्थ नहीं हो सकते। जीवन तथस्थता मानता ही नहीं, जीवन में तथस्थता होती ही नहीं। या तो सुंदर को बनाओ या तुमसे कुछ कुरूप निर्मित होगा। या तो आगे बढ़ो अन्यथा पीछे हट जाओगे, वहीं के वहीं रुके नहीं रह सकते। या तो कुछ गाओ या गालियां तुमसे निकलनी शुरू हो जाएंगी। वह जो प्राण की ऊर्जा है, या तो गीत बने या गाली बने। और चूंकि हमने समझा स्वर्ग कहीं और है, दूर सात आकाशों के पार, तो फिर हम करते भी क्या? फिर हमने पृथ्वी को नरक बना लिया। 3000 सालों में 5000 युद्ध आदमी ने लड़े। नरक में भी इतने युद्ध होते हैं, इसकी कोई पुराणों में इतना उल्लेख नहीं। 3000 साल में 5000 युद्ध, एक साल में करीब करीब 2 महायुद्ध। आदमी मारता ही रहा, काटता ही रहा। प्रत्येक राष्ट्र की 70% संपदा विध्वंस में लग रही। और बनाओ अणुबम, और बनाओ उज्जैन बम, वैसे भी जरूरत से ज्यादा तैयार हो गए। आज से 5 साल पहले एक एक आदमी को 7 बार मारा जा सकता था। इस तरह की 7 पृथ्वियां नष्ट की जा सकती थी, इतने उज्जैन बम थे। अब 700 बार मारा जा सकता है। 5 साल में काफी प्रगति हुई। एक आदमी एक ही बार में मर जाता है, इसका ख्याल रखना। 700 बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन राजनेता पूरा इंतजाम कर लेते। कौन भूल चूक करे? 700 बार पृथ्वी को नष्ट करने की तैयारियां हो गई, और तैयारियां बंद नहीं है, तैयारियां जारी। बमों के अंबार लगते जा रहे हैं। क्या होगा? इतने विध्वंस का आग्रह, जबकि लाखों करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, जबकि न मालूम कितने लोगों को दवा ना मिलती हो, जबकि न मालूम कितने बच्चे बिना दूध के मर जाएंगे, तब गरीब से गरीब देश भी, हमारा देश भी, जिसको अहिंसक होने की भ्रांति है और जिसको धार्मिक होने का अहंकार है और जो घोषणा करता रहता है कि हम पुण्य भूमि है क्योंकि सारे अवतार यही हुए, ये देश भी अपनी संपदा का 70% विध्वंस और युद्ध और सेनाओं पर खर्च करता है। यह कैसी विक्षिप्तता है? आदमी को क्या हो गया है? इतनी ऊर्जा से तो हम स्वर्ग को यहां बना लग सकते, निश्चित बना सकते, और ऐसा स्वर्ग कि देवता तरसे पृथ्वी पर जन्मने को। कथाएं कहती हैं कि देवता पुराने दिनों में तरसते थे, मुझे लगता नहीं, क्योंकि पुराने दिन में भी हालात यही थे, शायद इससे बदतर थे, बेहतर तो नहीं थे। राम और रावण भी ऐसे ही लड़ रहे थे। और ध्यान रखना, जो जीत जाता है, इतिहासकार उसके पक्ष में लिखते, अगर रावण जीत गया होता तो तुम राम के पुतले जला रहे होते, क्योंकि इतिहास तब रावण लिखवाता। अगर हिटलर जीत गया होता तो थोड़ा सोचो, इतिहास कौन लिखवाता, कैसा लिखा जाता? मुकदमे फिर भी चलते, जिसने नूरनबर्ग में मुकदमे चले वैसे ही कहीं मुकदमे चलते, लेकिन उन मुकदमों में जो जिन पर मुकदमे चलते वो होते रूजवेल्ट, चर्चिल, ट्रूमन, स्टालिन, इन लोगों पर मुकदमे चलते, इतिहास फिर भी लिखा जाता, मगर चूंकि इतिहास हिटलर लिखवाता, इतिहास कुछ और ही होता। हिटलर होता उद्धारक, मनुष्य जाति को बचाने वाला, पापियों से उद्धार करने वाला। युद्ध उस दिन भी होते थे, महाभारत उस दिन भी हुए, विध्वंस उस दिन भी जारी था। लोग इतने ही बेईमान थे, लोग इतने ही चोर थे, लोग इतने ही दुष्ट थे जितने आज, जरा भी कम नहीं थे, शायद थोड़े ज्यादा भला रहे हूं। क्योंकि बुद्ध ने 42 साल सुबह और शाम, दोपहर और रात एक ही बात कही कि चोरी ना करो, हिंसा ना करो, ईर्ष्या ना करो, दूसरे को कष्ट ना दो। लोग जरूर यही कामों में लगे रहे होंगे, नहीं तो बुद्ध क्यों 42 साल तक दिमाग खराब था। महावीर भी 40 साल तक यही लोगों को समझाते रहे, हिंसा ना करो। जरूर लोग हिंसा में रत होंगे, चोरी ना करो, बेईमानी ना करो, जैनों के 5 महाव्रत। आखिर चोरों की दुनिया में ही अचोरी का सिद्धांत पैदा होता है, और पापियों की दुनिया में पुण्य की बातें करनी पड़ती। और तुम जरा सोच के कहां करना कि सारे अवतारों का जन्म यही हुआ। उसका कारण यह हो सकता है कि सबसे ज्यादा उपद्रवी आदमी यहां थे, क्योंकि जहां बहुत लोग बीमार होते हैं वहां चिकित्सकों को आना पड़ता। तुम्हारे मोहल्ले में भी अगर किसी घर में रोज चला आ रहा है डॉक्टर और रोज चले आ रहे हैं वैद्य और हकीम, तो क्या तुम सोचते हो उस घर के लोग बड़े स्वस्थ हैं? जहां इतने हकीम, सब हकीम और सब वैद्य और सब चिकित्सक आते, और वो घर का आदमी बाहर आके डींग मारे कि ये पुण्य भूमि है, ऐसा एक हकीम नहीं जो यहां ना आया हो, ऐसा एक वैद्य नहीं जो यहां ना आया हो, ऐसा एक डॉक्टर नहीं जो यहां ना आया हो, सब यहीं पलते। वैसा ही तुम्हारा दावा है, इतने अवतार आए, आना पड़ा। कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, तो तुम्हारे देश में धर्म की हानि कितनी बार नहीं हो चुकी होगी इसका हिसाब लगाया। इतनी बार कृष्ण को आना पड़ा, फिर भी तुम पुण्य भूमि अपने को माने चले जाते हो। नहीं, अब तक पुण्य भूमि कहीं नहीं बन सकी, धर्म भूमि कहीं नहीं बन सकी, क्योंकि धर्म भूमि बनने का विज्ञान ही नहीं बन सका। धर्म को सृजनात्मकता दो, धर्म को विधायक करो, धर्म को जीवन विरोध से बचाओ, जीवन के प्रेम में लगाओ। प्रेम रंग रस ओढ़ चदरिया, धर्म को चादर बनाओ, प्रेम की, रंग की, रस की, सारे इंद्रधनुष उस चादर पर हों, सारे गीत, सारे दिए उस चादर पर हो, होली हो, फाग हो उस चादर पर, भगोड़ापन ना हो, पलायनवाद ना हो, जीवन का अंगीकार हो अहोभाव के साथ। धर्म की यही दृष्टि मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, धर्म हो जीवन का प्रेम, जीवन का विरोध नहीं, निषेध नहीं। धर्म हो इस अद्भुत जीवन के प्रति सम्मान, सत्कार, और हो कृतज्ञता की एक प्रतीति कि हे परमात्मा, तूने इतना प्यारा जीवन दिया, अब हम क्या करें, हम कैसे तेरी पूजा करें और कैसे तेरी प्रार्थना करें। एक ही उपाय है कि अगर हम थोड़ा इस जीवन को सुंदर कर पाएं, थोड़े और रंग भर दें, थोड़े और गीत भर दें, तो ही प्रार्थना, तो ही साधना। जिस क्षण वाणी का हुआ प्राण से मिलन मौन, सर्जना पिघलकर धरती में साकार हुई। जब भी तुम्हारे भीतर प्रार्थना होगी, मौन होगा, शांति होगी, ध्यान होगा, सर्जना पिघलकर पृथ्वी पर साकार होगी। कुछ तार पड़े थे बिखरे से, सब कहते हैं वे आदि अंत अवसान न जाने क्या क्या थे, स्वर सोए थे उनमें कितने, कितनी झंकारें उनमें थी निष्पंद। उन तारों पर कुछ गांवों में बहलाऊं मन है देव तुम्हारा भी, और क्या कहेगा भक्त, इतना ही कह सकता है। उन तारों पर कुछ गांव में बहलाऊं मन है देव तुम्हारा भी, तुमने छोटी सी वीणा दी फिर एक बार, जिस क्षण वीणा का हुआ प्राण से मिलन मौन, वंदना पिघल कर धरती में साकार हुई। तुम्हें एक वीणा दी है परमात्मा ने, तुम्हारा हृदय एक वीणा है, छेड़ो इसके तार, साधो। इस वीणा से कुछ अद्भुत स्वर उठ सकते हैं, उठाओ उन्हें। ये वीणा ऐसी ही पड़ी ना रह जाए। मैंने सुना है एक घर में एक पुराना वाद्य जिसे बजाना घर के लोग भूल गए थे, सदियों सदियों से रखा था, परंपरा से रखा था, पूर्वज छोड़ गए थे तो रहने दिया था, फिर घर में भीड़ भी बढ़ती गई, बच्चे भी बढ़ते गए, उस वाद्य को रखने की जगह भी नहीं थी तो उसको सरकाते गए, बैठक खाने से पीछे के कमरे में चला गया, पीछे के कमरे से कचरे की कोठरी में चला गया, लेकिन कचरे की कोठरी में कभी कभी उसके कारण उपद्रव हो जाता, कोई बिल्ली रात उस पर कूद जाती, उसके तार झंझना जाते, कोई चूहा टंकार मार देता, तार तोड़ देता, आवाज हो जाती, तो रात घर के लोगों की नींद में बाधा पड़ने लगी। आखिर एक दिन उन्होंने तय किया कि इसे हम रखे क्यों, इसकी जरूरत क्या है, फिजूल जगह घेरता है, फेंक ही क्यों ना दे। उन्होंने उठाया और जाकर उसे कचरे घर में डाला है। वे घर लौट भी नहीं पाए थे कि ठिटक गए बीच में ही, क्योंकि एक भिखारी ने जो रास्ते से गुजरता था उस अद्भुत वाद्य के तार छेड़ दिए। वे लौट पड़े, राह चलते लोग रुक गए, कोई गुजर ना सका वहां से, भीड़ स्तब्ध खड़ी हो गई। ऐसा अपूर्व संगीत किसी ने कभी सुना ही ना था। अलमस्त होकर वह भिखारी उस अद्भुत वाद्य को बजा रहा था। जब वाद्य का संगीत पूरा हुआ और संगीत शून्य में लीन हो गया तो घर के लोगों को होश आया। उन्होंने भिखारी से कहा, वाद्य हमें वापस लौटा दो, यह हमारा है। आज उन्हें पता चला यह बहुमूल्य है। पर उस भिखारी ने कहा, यह तुम्हारा था तो कचरे घर पर फेंका क्यों, जिस क्षण फेंका उसी क्षण तुम्हारा नहीं रहा। और मैं तुमसे कह दूं कि वाद्य उसका है जो बजाना जानता है, तुम इसका करोगे क्या, फिर बिल्ली कूदेगी, फिर चूहा काटेगा, फिर बच्चे तारों को छेड़ेंगे, और जिससे अद्भुत संगीत पैदा होता है उससे केवल शोरगुल पैदा होगा। तुम करोगे क्या, यह तुम्हारा नहीं, तुम इसके मालिक नहीं हो, मालिक वही है जो इसे बजा ले। जब तक तुम अपने हृदय को बजाना ना सीख लोगे, अपने हृदय के मालिक नहीं हो, तब तक हृदय पड़ा है बेकार। वीणा तो है, कहो परमात्मा से, उन तारों पर कुछ गाऊं मैं, बहलाऊं मन है देव तुम्हारा भी। तुमने छोटी सी वीणा दी फिर एक बार, जिस क्षण वीणा का हुआ प्राण से मिलन मौन, वंदना पिघल कर धरती में साकार हुई। मैं क्या जानूं पथवी विधान, मैं तो भविष्य के ज्योति शिखर पर पग धरने वाला विहान, जिसकी विधायिका शक्ति भावना भरी भक्ति। भक्ति कुछ और नहीं है, एक विधायक रस है जीवन में। मैं पलक एक, मैं एक गान, उच्छ्वास एक, विश्वास एक, मैं ही तुली था देव तुम्हारे हाथों में, जिस पर श्रद्धा थी गई रीझ, फिर एक बार, जिस क्षण श्रद्धा का हुआ प्राण से मिलन मौन, साधना पिघलकर धरती में साकार हुई। जिस क्षण वाणी का हुआ प्राण से मिलन मौन, सर्जना पिघलकर धरती में साकार हुई। तुम पूछते हो संतों की सृजनात्मकता का स्रोत कहां है, परमात्मा स्रोत है सृजनात्मकता का, सब सृजनात्मकता का स्रोत परमात्मा है, और जब तुम उससे जुड़ोगे तो तुमसे भी बहेगा, और तुमसे बहे तो ही जानना कि जुड़े, तुम्हारा चेहरा लंबा और मातमी बना रहे, और तुम उपवास और व्रत और नियम और अपने को गलाने और सड़ाने और परेशान करने में ही लगे रहो, तो समझना कि शायद तुम्हारा शैतान से सत्संग हो गया है, भगवान से नहीं। भगवान तो उत्सव है, इन हरे वृक्षों में देखो, इन हरे वृक्षों से छन छन के आती हुई सूरज की किरणों में देखो, इन पक्षियों की आवाजों में देखो। भगवान तो उत्सव है, भगवान महोत्सव है। और जब तुम्हारे जीवन में भी उत्सव आता है तो गीत पैदा होंगे, मूर्तियां बनेंगी, मंदिर उठेंगे, रंग फैलेंगे, फाग होगी, गुलाल उड़ेगी। और जब तुम्हारे जीवन में ऐसा आनंद का उत्सव आ जाए तो ही समझना कि तुम्हारी धर्म से पहचान हुई, सद्धर्म से पहचान हुई। एस धम्मो सनातनो, ऐसा ही धर्म सनातन धर्म है जो उत्सव ले आए। लेकिन रुग्ण मनुष्य ने धर्म को भी रुग्ण कर दिया है, बीमार हाथों में पड़ के धर्म भी बीमार हो गया है। नकारात्मक आदमी मेरी दृष्टि में नास्तिक, मेरी नास्तिक की परिभाषा यही। आस्तिक मैं उसे कहता हूं जो विधायक है, जो जीवन को कहता है हां समग्रता से, उसे मैं आस्तिक कहता हूं। ईश्वर को माने न माने, मानना न मानने का कोई मूल्य नहीं है, जीने का मूल्य है। जो इस तरह जीता है कि जीवन के साथ हां का उसका संबंध होता है वह आस्तिक। नास्तिक वह है जिसका जीवन के संबंध नहीं का संबंध है, नकार का संबंध है, जो हर चीज को तोड़ रहा है, हर चीज को खंडित कर रहा है, जो मृत्यु की सेवा में लीन है, जो परमात्मा से शिकायत कर रहा है कि तुमने मुझे जन्म क्यों दिया, किस कसूर का दंड दिया है मुझे, किन पापों का फल भोग रहा हूं, जो परमात्मा से यह शिकायत कर रहा है वो नास्तिक है। ये किन्हीं पापों का फल नहीं है, ये तुम किन्हीं गलत किए गए कामों का दंड नहीं पा रहे हो, ये परमात्मा का प्रसाद है। इसे प्रसाद रूप ग्रहण करो ताकि तुम्हारे भीतर से धन्यवाद उठ सके, और जिसके भीतर से धन्यवाद उठा उसके भीतर से प्रार्थना उठी। धन्यवाद ही प्रार्थना है।
आज के एपिसोड में हमने म्यूजिक में लाइव रिकॉर्डेड सेशंस सेलिब्रेशन नंबर मिला रेपा एंड वन स्काई म्यूजिक से और आरिगातो नंबर ओशो जापान फेस्टिवल से लिया गया है। मधुरम नंबर देवा प्रेमल की एल्बम से है और लास्ट में जूसी रिमिक्स चिन्मय डंस्टर एंड संदीप श्रीवास्तव की लेटेस्ट एल्बम मिस्टिक पोएट्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। साथ ही ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अरिगातो।
I don't. देखो 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 देखो